बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये असफ़ा ऑडियो लाइब्रेरी की आवाज़ है। मुलाहिज़ा कीजिए, अशफाक अहमद ख़ान की तहरीर सिलसिला दौर नबूवत के बच्चे से अनोखा सखी, जो 32 सफ़हात पर मुश्तमिल है। पेशे लफ्ज़। खूबी कोई भी हो, शख्सियत में निखार पैदा कर देती है। बसा औक़ात अल्लाह ताला की इनायत से आदमी में ऐसी खूबी भी पैदा हो जाती है जो इसको दर्जा कमाल तक पहुँचा देती है, और वही खूबी इसकी पहचान भी बन जाती है। सखावत भी ऐसी ही एक नायाब खूबी है और इंसान में पाई जाने वाली दीगर खूबियों में सबसे ज़्यादा मुमताज़ हैसियत रखती है। सखावत करने वाला अल्लाह के नहायत करीब हो जाता है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसको मोहब्बत और एहतराम देते हैं। सखावत इंसान को जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर कर देती है। सखावत सिर्फ़ अल्लाह की राह में माल खर्च करने को नहीं कहते, जिहाद के दौरान अपनी जान का नजराना पेश करना भी सखावत है। किसी दूसरे के काम के लिए अपना वक्त खर्च करना भी सखावत है। और वो साहिब जो अपने वक्त के अजीम सहाबी रसूल थे, इन सारी खूबियों से मुज़य्यन थे। सखावत उनकी पहचान बन गई, ये खूबी उनकी शख्सियत का लाजमी अंसर ठहरी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बचपन ही में उस खूबी को पहचान लिया था, और शायद इसी बिना पर उन्हें मुस्तकबिल का एक मोअज़्ज़ज़ आदमी करार दिया था। उनकी सखावत में भी अजीब नुदरत थी। आम तौर पर सखावत का अल्लाह की राह में माल खर्च करने का अंदाज़ ये होता है कि नादार और मुस्तहिक लोगों से रुजू किया तो उनकी इमदाद कर दी, या फिर ख़ुद किसी मुस्तहिक को तलाश करके उसकी माली आनत कर दी। लेकिन इन दोनों पहलुओं से लोगों के काम आने के साथ साथ हर जुम्मे की रात अपने गुलाम को दिनारों की थैलियां देकर कूफे की मस्जिद में भेजते। गुलाम वो थैलियां ले जाकर नमाजियों के सामने रख देता, ज़रूरतमंद उस रकम में से अपनी ज़रूरत की रकम अस खुद उठा लेते। सखावत के इस अनोखे अंदाज के बिना पर कूफे की मस्जिद शाम के वक्त नमाजियों से भर जाती थी। बेमिसाल शख्सियत की बेमिसाल सखावत पर एक खूबसूरत तहरीर। वसलाम अब्दुल मालिक मुजाहिद। हिजाज की सरजमीन अजब तमाशा देख रही थी। उसने कबीलों को आपस में लड़ते देखा था, ख़ानदानों को झगड़ते देखा था, बिरादरी के नाम पर नफ़रत के खेल देखे थे। लेकिन ये कैसी हवा चली थी कि बाप बेटे का दुश्मन हो गया था। माँ अपने ही सगे बेटे को जंदा में बंद कर रही थी, भाई भाई की जान के दर पे था। यूं लगता था कि किसी ने उनके दिलों का रुख फेर दिया है। वाकई जिस दिन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले हिजाज को सच्चाई के रास्ते पर चलने की दावत दी थी, अपने नबी होने का ऐलान किया था, उसी दिन से कुफार के दिलों में रिश्तों की मोहब्बत नफ़रत की आग में बदलने लगी थी। जिन लोगों को हिदायत का नूर नसीब हुआ वो अपनी खुशकिस्मती पर नाज कर रहे थे, और हिदायत से महरूम लोग इनकी बदकिस्मती पर मातम कर रहे थे। अपने आबाई दीन से फिरने वालों को बहला फुसला कर, लालच देकर और कहीं कहीं मारपीट से काम लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ने पर आमादा करने की कोशिशें हो रही थीं, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई थीं। अदावत और नफ़रत का ये खेल दिन ब दिन तेज़ होता जा रहा था। हिजाज की फ़िज़ा दुश्मनी के जहर से आलूदा हो चुकी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर हिजाज की सरजमीन तंग होती जा रही थी। उनका माशरती बायकॉट किया जा रहा था, उन्हें तरह तरह से अजियतें दी जा रही थीं। नफ़रत और अदावत की आग में जलने वालों में एक आस बिन ओहैहा भी था। उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों के ख़िलाफ़ साजिश करने का जो मौका भी मिला, उसने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया। तकलीफ़ पहुंचाने का जो रास्ता भी नज़र आया, आंखें बंद करके उस रास्ते पर चल दिया। दुश्मनी के रास्ते में आज़ बिन ओहिया और उसके दूसरे हमसफरों की तरफ से तकलीफ़ जब इंतहा को छूने लगी, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सरजमीन हिजाज को छोड़ने पर मजबूर हो गए। इनकी मंजिल यसरब यानी मदीना थी। ख़याल था कि वहाँ पहुँच कर वह आज़ादी के साथ हिदायत की रोशनी फैला सकेंगे, लेकिन ये सुकून और इत्मीनान आर्जी साबित हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार मुखालफत के जिस तूफ़ान को पीछे छोड़ आए थे, वह बदस्तूर इनके ताकुब में था। ये तूफ़ान अपने दामन में एक मार्का समेटे चला आ रहा था। बिलाखिर बदर के मैदान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार का उनसे सामना हो गया। अरब के सबसे अहम कबीले कुरैश के बड़े बड़े सरदार ताकत के नशे में मैदान जंग सजाने के लिए पहुंचे हुए थे। नफरत की आग इनके दिलों को झुलसा रही थी। इन्हीं में आर्स बिन ओहिया भी शामिल था। वह अपने दिल में फतह की उम्मीद लिए आया था। उसे पूरा यकीन था कि जीत उसका मुकद्दर होगी। उनका लश्कर असला और साजो सामान से लैस था। हर जवान की पीठ तले घोड़ा या ऊंट था। वो तादाद में भी ज्यादा थे, फिर कौन था जो इनकी जीत को हार में बदलता? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार, जिनके पास लड़ने के लिए असला था, असला तक ना था? चंद तलवारों के जोर पर वो कर भी क्या सकते थे? इनके पास सवारी के लिए गिनती के चंद ही घोड़े थे। आज बिन ओहिया तसव्वुर में भी नहीं कर सकता था कि बेसाजो सामान गिनती के चंद लोग उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो इस वक्त से नाआशना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निसार सच्चाई और हक के लिए लड़ रहे हैं, जबकि वो इसके हवारी, झूठ और बातिल की फतह के लिए आए हैं। खुद वो अपने अंदर भड़कती हुई नफरत और दुश्मनी की आग को इनके लहू से बुझाने आया था, लेकिन बुरी तदबीर अपने करने वाले ही को हलाक करती है। उनकी चाल ही उनकी हलाकत का जरिया बन जाती है। आज बिन ओहिया मैदान में आया तो इसका सर फखर और गुरूर से तना हुआ था। वह अपने सामने खड़े मुख्तसर लश्कर को हकीर निगाहों से देख रहा था। उसे अपने मुकाबले और टक्कर का कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इस नादान की गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई। उसके मुकाबले वो शहसवार आया जिसकी ज़र्ब कभी ख़ता नहीं गई। अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हो बड़ी शान के साथ उसके मुकाबले पर आए। गुरूर का पैकर आज बिन अहिया उनकी शुजाअत का ज़रा भी ज़ोर सह ना सका। उसके अंदर दुश्मनी की भड़कती हुई आग अपने ही खून से बुझ गई और लम्हों ही में वो मौत को गले लगा चुका था। यही थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा और कुफ्फारे मक्का के दरमियान मार्के की एक झलक। बड़े बड़े सरदारान कुरैश इस जंग में अपने गुरूर समेत हलाक हुए। मुसलमान फतह से हमकिनार हुए। दूसरे सरदारों की तरह आज बिन ओहिया भी जहन्नुम में वासिल हुआ। लेकिन आज बिन ओहिया की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। यहाँ से एक और कहानी जन्म लेती है, उसके बेटे सईद बिन आस की सूरत में। नेकी का नया बाप शुरू हो गया। बाप दादा कुफर की हालत में मर गए, सईद यतीम हो गया। हिजरत के साल ही में तो वो पैदा हुआ था। कौन था जो इसको सच्चाई का रास्ता दिखाता? कोई भी तो नहीं था जो इसे बाप दादा के कुफर की जद से बचाकर इस्लाम की तरफ लाता। ये मुमकिन था कि मुशरिक रिश्तेदार उस बच्चे को बाप के अलमनाक मौत के झूठे सच्चे कस्से सुनाकर उसके अंदर इंतकाम की आग भड़का देते। उसके लहू में मुसलमानों से नफरत का जहर भर देते। ये कोई बहुत मुश्किल काम था भी नहीं। अपने बाप के कातिलों से कोई भी हमदर्दी नहीं रखता। अपने रिश्तों के खून को कौन माफ़ कर सकता है? सईद उम्र के उस दौर से गुजर रहा था जब कदम कदम पर बाप की शफ़क़त और मोहब्बत की ज़रूरत महसूस होती है। बाप को ना पाकर उसके अंदर एहसास महरूमी उभर सकता था। जिन लोगों ने उसके सर से बाप का साया छीन लिया, वो उनसे नफरत और दुश्मनी भी कर सकता था। लेकिन सईद में ऐसा का कुछ भी नहीं था। उसकी रूह की गहराइयों में इस्लाम की सच्ची रोशनी उतरी हुई थी। उसकी नेक फितरत जान चुकी थी कि सच क्या है और झूठ क्या है। हक और बातिल के रास्ते उस पर वाज़े हो चुके थे। इसलिए सईद बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हो उस रास्ते की तरफ दौड़े जो हक का रास्ता था। वही रास्ता जिस पर चलकर मुसलमान और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने गए थे। सईद रदी अल्लाह तआला अन्हों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत में हिदायत की रोशनी पाई, इल्म सीखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त से सरशार हुए। इसी के नतीजे में उनके अंदर उस सोचो फ़िक्र ने जन्म लिया जिसका सामना करके उमर रदी अल्लाह तआला अन्हों दंग रह गए। वो एक दिन सईद बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हों से फरमाने लगे, सईद, मैंने तुम्हारे बाप को कत्ल नहीं किया, बल्कि मैंने तो अपने मामू आज बिन हश्याम को कत्ल किया था, और मुझे एक मुशरिक के कत्ल पर माजरत की ज़रूरत नहीं। सईद रदी अल्लाह तआला अन्हों ने फरमाया, अगर आप मेरे बाप को कत्ल करते भी तो कोई बात नहीं थी, वो बातिल पर और आप हक पर थे। सईदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हों को उनकी इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ। फरमाने लगे, कुरैश दूर अंदेशी में सब लोगों से अफजल हैं। सईद बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात हैरत अंगेज़ तो थी, लेकिन ये सब ईमान का कमाल था। जो एक दफ़ा सच्चे दिल से ईमान ले आता है, मुसलमान हो जाता है, फिर दीन के रास्ते में जान, माल, नफ्स और औलाद सब हकीर होकर रह जाते हैं। सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब इस बात का सबूत था कि इनके दिल में अपने बाप के कातिल के लिए कोई बुग़्ज़ और नफ़रत नहीं। उन्हें उस बात से कोई सरोकार नहीं कि उनके बाप का कातिल उमर है या अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। उनके नज़दीक तो ये बात अहम है कि इनके बाप का कातिल दिफाए दीन के लिए लड़ रहा था, जबकि उनका बाप इस दीन को और इसकी इमारात को ढा देना चाहता था। उसको अपने किए का सिला मिल गया। यह अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि कुफर के अंधेरों से एक नूर के पैकर ने जन्म लिया, एक मुशरिक के घर में एक मोमिन ने जन्म लिया। सईद बिन आस रदिल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी गहरी अकीदत और मोहब्बत रखते थे। इसी बिना पर इन्हें भी दरबार रसालत से मोहब्बत और शफ़क़त का बेपाया खजाना नसीब हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेमिसाल बसीरत से देख लिया था कि इस बच्चे को अजीम मर्तबा और शान हासिल होगी। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा इनके हवाले से एक दफ़ा बयान करते हुए कहते हैं कि एक दिन एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, मैंने नियत की है कि ये चादर अरब के मोजेज़ आदमी को दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस बच्चे को दे दो। इशारा सईद बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ था, जो करीब ही खड़े थे, इसीलिए ये कपड़े सआदतमंदी वाले कपड़ों के नाम से मशहूर हुए। उस वक्त सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र बामुश्किल 10 साल थी। उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ुर्ब ये भी जाहिर करता है कि वो हर वक्त उस कोशिश में रहते थे कि महफिल में हमेशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होकर बैठें और हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहें। यही वजह थी कि उस औरत के आने पर सही दरबार रिसालत में मौजूद थे और वहाँ हर वक्त मौजूद रहना उनकी घुट्टी में शामिल हो चुका था। इसी क़ुर्ब की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईद की एक एक चीज़, उनकी हर हर बात को नज़र में रखते थे। उनकी आदात और उनकी हरकात व सकनात के मुशाहदे ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमान इरशाद किया, इस बच्चे को अजीम शान नसीब होगी। सईद बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हो को अल्लाह तआला ने बड़ी जुर्रत और दिलेरी अता की थी। आपके अंदर बसीरत भी थी और कायदाना सलाहियतें भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सैयदना अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हो खलीफा बने। उन्हें खिलाफत की इब्तदाही में बे इंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत से कबाइल मुर्तिद हो गए, यानी इस्लाम से फिर गए, और उन्होंने इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान कर दिया। इनमें से कुछ तो वो थे जो ये कहते थे कि हम इस्लाम की सभी बातों को मानेंगे लेकिन ज़कात नहीं देंगे। कुछ वो थे जिन्होंने मुस्लिमा कज़ाब की झूठी नबूवत को तस्लीम करके ईमान से हाथ धो लिए। मुस्लिमा ने यह दावा किया था कि मैं भी नबी हूँ, हालांकि कुरान और तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बड़ी वाज़े थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन्नबीयीन हैं। सईदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हों ने इन सब कबाइल से जंग करके इन्हें दोबारा इस्लामी हुकूमत का मुती बनाने का फ़ैसला किया। इस मकसद के लिए 11 लश्कर तरतीब देकर इनके 11 कायद मुकर्रर किए गए। इन्हीं में से एक कायद सईद बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हों भी थे। आपकी कम उम्री के बावजूद सईदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हों ने अपने तजर्बे से भांप लिया था कि इनमें एक तजर्बाकार कायद की तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं। सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु की साबित कदमी, शुजात और मामला फहमी भी आपकी नज़रों में थी। उस वक्त लश्कर में इनसे ज़्यादा तजर्बेकार और उम्र रसीदा सहाबी भी मौजूद थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह की दी हुई जहानत से इनकी सलाहियतों को पहचान लिया था, जिसकी सलाहियतों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतमाद फरमाते थे। सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु भी इस पर फौरन एतमाद कर लेते थे। सईदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हों ने उन्हें हम कतान की तरफ पेश कदमी का हुक्म दिया। ये इलाका शाम की तरफ था। सईद रदी अल्लाह तआला अन्हों ने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया। उन्होंने बेहतरीन तरीके से लश्कर की क़यादत की और दुश्मनों को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया और इन लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ लौटने और खलीफा वक्त की अतात तस्लीम करने पर आमादा किया। उन्होंने फतह मुकम्मल की। इन्हीं दिनों माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो शाम के गवर्नर मुकर्रर हुए। सईद रदी अल्लाह ताला अन्हो ने भी वहीं रिहाइश इख्तियार कर ली और माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास ही ठहर गए। सईदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने दौरे हुकूमत में उन लोगों के बारे में पूछते रहते थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने का शर्फ़ हासिल हुआ था। कुरैशियों के बारे में तो ख़ास तौर पर जानने की आरजू रखते थे। आपको सईद रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में बताया गया कि वो आजकल शाम में माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास ठहरे हुए हैं और वो इनका भरपूर ख्याल रख रहे हैं। इनके साथ बहुत उसने सुलूक से पेश आते हैं। सईद रदी अल्लाह ताला अन्हो के मर्तबा मकाम से सईदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो अच्छी तरह आगाह थे। उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि इन जैसे अजीम सहाबी को इनके पास होना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो को पैगाम भेजा, सईद को मेरे पास भेज दो। माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सईदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की ख्वाहिश के एहतराम में सईद रदी अल्लाह ताला अन्हो को बड़ी इज्जत और एहतराम से मदीने भेज दिया। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने आपका शायान शान इस्तकबाल किया जिस तरह एक शहसवार जंग और जंगे जू और अजीम सहाबी का होना चाहिए था, और इनसे कहा, भतीजे मुझे पता चला है कि तुम एक आजमाइश और इसलाह में इसलाह हो, इसमें इजाफा करो, अल्लाह तुम्हें खैर में ज़्यादा करे। गालिबन सैदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के इस जुमले से मुराद ये थी कि सईद रदी अल्लाह ताला अन्हो गलत राह पर चलने वालों और भटकने वालों के ख़िलाफ़ सख्ती से काम लेते थे, तनकीद और इसलाह का पहलू कभी फरामोश नहीं करते थे। सईद बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो जहाँ और ख़ूबियों में यकता थे, वहाँ एक ख़ूबी ऐसी भी थी जो इनकी ज़ात की पहचान का एक ज़रिया बन गई। वो ख़ूबी इनकी शख्सियत का लाजमी अंसर करार पाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन ही में आपकी इस खूबी की बिना पर आपको मुस्तकबिल का मोअज़्ज़ज़ आदमी करार दिया था। ये खूबी थी आपकी सखावत, अल्लाह की राह में बेदरीग खर्च करते थे। आपकी सखावत बतौर ज़र्बुल मिसल पेश की जाती थी। दुनियादारों का आम तौर पर यह तरीक़ा होता है कि जब कभी वो अल्लाह की राह में खर्च करने पर आमादा होते हैं तो अपने मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ बचा कर रखने के बाद बहुत मामूली सी रकम खर्च करते हैं। इसमें भी इन्हें 100 तरह के अंदेशे सताते हैं, लेकिन सईद रदी अल्लाह ताला अन्हों को फ़िक्र फाका का कोई डर नहीं होता था। वो जानते थे कि जो अल्लाह उन्हें आज रिस्क दे रहा है वही कल भी देगा। सखावत की खूबी इंसान की अच्छी खूबियों में से एक है। सखी अल्लाह का दोस्त है और लोग उससे मोहब्बत रखते हैं। सखावत इंसान को जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर करती है। और सखावत सिर्फ यही नहीं होती कि अल्लाह की राह में माल खर्च कर दिया जाए, मैदान जंग में अपनी जान का नजराना पेश करना भी सखावत है, किसी दूसरे के काम के लिए वक्त सर्व करना भी सखावत है। सईद रदी अल्लाह ताला अन्हो सखावत की इन सारी खूबियों से मुज़य्यन थे। एक दफ़ा एक बदवी मदीना मुनव्वरा आया। वो नादार और मफलूकुल हाल था। इसके ज़िम्मे बहुत कर्ज था। उसे कर्ज से निजात की कोई सूरत नज़र न आई तो मदीने का रुख कर लिया। उसका इरादा था कि मदीने के चंद मुखय्यर और सखी लोगों से मिलकर अपनी मुश्किल का हल निकाले। वो लोगों से मदीने के सखी लोगों के बारे में पूछता फिरा। लोगों ने उसे मशवरा दिया, तुम हसन बिन अली के पास जाओ, अब्दुल्ला बिन जाफर के पास जाओ, सईद बिन आस से मिलो और अब्दुल्ला बिन अब्बास से राबता करो रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। इन चारों सखियों का नाम मालूम होने के बाद वो बदवी इनकी तलाश में था। इसने तलाश के सिलसिले में एक मस्जिद का रुख किया तो इसे मस्जिद से एक आदमी बाहर निकलता नज़र आया। उसकी शख्सियत में अजीब सा रौब था। वक़ार और संजीदगी उसके अंदाज़ और अतवार से टपकती थी। इसके हमरा अकीदतमंदों का एक हुजूम भी था। बदवी ने दिल में सोचा, हो ना हो ये कुरैश का कोई बहुत बड़ा आदमी है। उसने वहाँ मौजूद लोगों से सवाल किया, ये कौन साहब हैं? जिससे सवाल किया गया था उसने रुक कर हैरत से उस बदवी को देखा, तुम इन्हें नहीं जानते? ज़रूर कहीं बाहर से आए हो। बदवी ने तस्लीम किया कि वो वाकई बाहर से आया है। तब वो साहब बोले, ये सहाबी रसूल सईद बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। वो बदवी इनके मकाम और मर्तबे और इज़्ज़त एहतराम को देखकर बहुत मुतासर हुआ। बोला, यही तो हैं जिनके बारे में लोगों ने मुझे बताया है। इन्हीं से मिलने की ख्वाहिश लिए घूम रहा था, किस्मत इन्हें सामने ले आई। बदवी इतना कहकर सईद रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ साथ चलने लगा और इनसे अपनी आमद का मकसद बयान किया, और साथ ही ये भी बताया कि मदीने के लोगों ने जिन सखी शख्सियात का तذکرہ किया है इनमें से एक आप भी हैं, आप मेरी ज़रूरत को पूरा करने की कुदरत रखते हैं। सईद बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बदवी की सारी बातें सुनी, लेकिन इन बातों का कुछ जवाब ना दिया बल्कि खामोशी से चलते रहे। बदवी इनके रवैये पर बहुत हैरान हुआ, मायूसी इसके दिल में उतरने लगी। इसने सोचा शायद मदीने के लोगों के दिल में इनके बारे में कुछ गलत फहमी पैदा हो गई है, ये तो सखी नहीं हो सकते जिसने मेरी बात का जवाब तक नहीं दिया, वो मुझे जो माल कहाँ से देगा। उसने मायूस होकर वापसी का इरादा किया ही था कि सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु का घर आ गया। आपने बदवी का इरादा भांप कर उसे रुकने का इशारा किया, फिर अपनी खजांची से कहा, इस बदवी से कहो कि लाओ माल किस पर लाद कर ले जाना है। खजांची ने बदवी से कहा, मियाँ तुम माल किस पर लेकर जाओगे? बदवी इस बात पर हैरान हुआ, चें बजबी होकर बोला, अल्लाह सईद को आफियत में रखे, मैंने सोचा चांदी मांगा है, खजूरें तो तलब नहीं की जो लादने के लिए कोई जानवर लेकर आऊं। खजांची ने कहा, अफसोस है तुम्हारी सोच पर, मियाँ तुम लाओ तो सही, आखिर इतना बोझ उठाएगा कौन। इतना कहकर खजांची ने 40,000 दिनार लाकर उसके हवाले कर दिए। बदवी की तो आंखें फटी की फटी रह गईं, उसके वहमो गुमान में भी ना था कि सईद रदी अल्लाह तआला अन्हो इसके हाल पर इतना ज़्यादा करम करेंगे। उसे अपनी सोच और फिक्र पर शदीद नदामत हुई। उसने सईद रदी अल्लाह तआला अन्हो के मुतालिक बदगुमानी से काम लिया था। उसने उस खतीर रकम को संभाला और सीधा अपने इलाके की तरफ चल दिया। उसने बाकी 3 मुखय्यर हजरात से मिलने की भी ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही थी। कर्ज अदा करके भी इसके पास बहुत कुछ रकम बचती थी। इसी तरह एक और बदवी सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और इनसे सवाल किया। सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गुलाम से कहा, इसको 500 दे दो। बदवी ने पूछा, 500 क्या? सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, 500 दिनार। बदवी को अपनी समात पर शक हुआ, 500 दिनार नहीं कुछ और कहा होगा। अभी वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि गुलाम ने 500 दिनार की थैली उसे थमा दी। बदवी ने हैरत से सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखा, फिर दिनारों को उलट पुलट कर रोने लगा। सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, आप किस वजह से रो रहे हैं? बदवी अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये ज़मीन आप जैसे अजीम उल मुरतबत लोगों को भी खा जाएगी। सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत की ऐसी बेशुमार मिसालें थीं, जब कोई साहिल सवाल करता और आपके पास उस वक्त कुछ ना होता तो उस रकम को अपने जिम्मे कर्ज लिख लेते कि जब होगी अदा कर दूंगा। हफ्ते में एक बार अपने दोस्तों को खाने की दावत देते थे, उनको उम्दा लिबास और दीगर तहाइफ से नवाजते। इनके घर वालों का भी आप हर तरह से ख्याल रखते। आप हर जुम्मे की रात अपने गुलाम को दिनारों की थैलियाँ देकर कूफा की मस्जिद भेजते, गुलाम वो थैलियाँ ले जाकर नमाजियों के सामने रख देता। ज़रूरतमंद इस रकम से अपनी ज़रूरत की रकम ले लेते। सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु की इस अनोखी सखावत की वजह से कूफे की मस्जिद शाम के वक्त नमाजियों से भर जाती थी। एक दफ़ा माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इनसे फरमाया, सईद मुझे अपने माल के बारे में बताओ, मुझे पता चला है कि तुम इसे बहुत चाहते हो, उसको हासिल करने के लिए बहुत जस्तजू करते हो। सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुन इनकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाने लगे, अमीरुल मुमिनीन, बेशक हमारे पास बहुत माल है जिससे हमें नफ़ा हासिल होता है। जब हमें कम नफ़ा हासिल होता है तो हम अपने खर्च में कमी कर देते हैं, अगर मुनाफा ज़्यादा हो तो हम खर्च भी ज़्यादा कर देते हैं। हमारे पास रकम हो तो हम उसे ज़रूरतमंद और मोहताज से बचा कर नहीं रखते, हम अपने लिए गोश्त या चर्बी का टुकड़ा तक बचा कर नहीं रखते। माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ये सुनकर बहुत हैरान हुए और फरमाया, इस तरह मामला कब तक चलता है? सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस तरह मामला चलाते हुए नस साल तो बीत ही जाता है, बाकी नस साल में क्या करते हो? माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हैरत से सवाल किया। सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बकिया साल में हमें वो लोग मिल जाते हैं जो हम पर खर्च करें, हमारे मामला को इसी तरह ठीक करने की कोशिश करें जिस तरह हम दूसरों के लिए करते हैं। माविया रदी अल्लाह तआला अन्हो इनकी बातें सुनकर मुतमईन हो गए और वो इनकी सखावत के दिल से कायल हो गए। भला ऐसा कौन होगा जो अपना सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दे, अपने पास लुटाने के लिए कुछ ना हो तो इसे अपने जिम्मे कर्ज लिख दे। एक दफ़ा आप मस्जिद की तरह तशरीफ़ ले जा रहे थे कि एक आदमी आपके साथ साथ बड़े एहतराम से चलने लगा। सईद रदी अल्लाह तआला अन्हो ने इससे पूछा, क्या तुम्हें कोई मुश्किल दरपेश है या तुम्हारी कोई हाजत है जिसके लिए तुम मेरे साथ चल रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, जी नहीं, मेरी कोई हाजत नहीं, मैंने आपको अकेले जाते देखा तो आपके साथ हो लिया। आपने उससे कहा, लिखने के लिए दवात और चमड़ा लाओ और मेरे फला गुलाम को बुला कर लाओ। वो आदमी चमड़ा और दवात ले आया और साथ में उनके गुलाम को भी बुला लाया। आपने गुलाम के सामने उसे अपने ऊपर 20,000 दरहम कर्ज लिख कर दे दिया और उसे कहा कि जब हमारा गल्ला आएगा तो हम तुम्हें अदा कर देंगे। कुछ ही अरसे के बाद आपकी वफ़ात हो गई। वो तहरीर आपके बेटे उमर बिन सईद के पास लाई गई तो उसने वो 20,000 दरहम अदा कर दिए। इसी तरह एक बार माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको 50,000 दरहम दिए और फरमाया, इससे कोई जागीर खरीद लीजिएगा। सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु भला ऐसा कब कर सकते थे? फरमाने लगे, मैं इससे ऐसी तारीफ खरीदना चाहता हूँ जिसकी वजह से मेरा नाम हमेशा बाकी रहे। मैं भूखों को खाना खिलाऊंगा, बेवाओं की शादी करूंगा, गुलाम आज़ाद करूंगा, दोस्तों की दादरसी करूंगा, पड़ोसियों के हाल की दुरुस्ती की कोशिश करूंगा। माविया रदी अल्लाह तआला अन्हों ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान के बाद जिक्र शर्फ के लिए सबसे बड़ी चीज़ सखावत है, और सखावत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सईद रदी अल्लाह तआला अन्हों की सिफत में बनाया है। सईद रदी अल्लाह तआला अन्हों को अल्लाह तआला ने फसाहत व बलागत की खूबी भी अता की थी। आप जब गुफ्तगू करते तो लोग मशहूर हो जाते। आपके दानिशमंदाना अकवाल आपकी जहानत और बुलंद फिक्री की अक्कासी करते हैं। ख़ास तौर पर अपने बेटों को की गई वसीयत और नसीहतें तरबियत का बहुत उम्दा पहलू रखती हैं। आइए इनकी फ़िक्र की रोशनी से अपनी ज़िंदगी के अंधेरों को दूर करें। ए बेटे, शरीफ से मजाक ना करना, वो तुम्हारे खिलाफ़ अदावत रखेगा, और कमीने से भी मजाक ना करना क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर जुर्रत करेगा। ए बेटे, मेरी बेटियों की शादी हम पल्ला यानी मर्तबे में बराबर के सिवा ना करना, अगरचा जो कि रोटी के एक टुकड़े के बदले में करना पड़े। ए बेटे, मेरा चेहरा मेरे भाइयों से छुप जाए लेकिन मेरी नेकियां और भलाइयां उनके साथ हैं, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ए बेटे, मैं तेरी निगाहों को उस वक्त से सखावत दिखा रहा हूँ जबकि तू पंगोड़े में होता था और आज तू उस मकाम पर पहुँच गया है। अगर सखावत की खूबी आसान काम होता तो घटिया और कमीने लोग उस काम में तुमसे सबकत ले जाते, लेकिन ये खूबी कड़वी और सख्त है। ये सिर्फ सिर्फ वो हासिल कर सकता है जिसे इसकी फजीलत और सवाब का इल्म है। लोग इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, ना उनके आने का कुछ पता चलता है और ना उनके जाने का। उसकी वजह गालिबन यही होती है कि उनकी शख्सियत कुछ ख़ास खूबियों से महरूम होती है। वो दुनिया के समंदर में एक बेयारो मददगार पत्ते की मानिंद बहते बहते नज़रों से ओझल हो जाते हैं। दुनिया मकाम उन्हीं को देती है जो कुछ ख़ास खूबियाँ रखते हों। वह साहिब भी ऐसे ही थे। सखावत उनकी ज़ात की पहचान बनी। उनकी सखावत के अंदाज़ भी निराले थे। मांगने पर तो सभी दे देते हैं, मज़ा तो तब है जब बिन मांगे दे दिया जाए। उन अजीम सहाबी का तर्ज़ अमल ऐसा ही था, बिन मांगे लोगों को दे देने वाला। यहाँ पार्ट नंबर 8 मुकम्मल हुआ। आगे की तफसील अगले पार्ट में जानिए। जज़ाकअल्लाह।